अस्सुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, 10वां 12। यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, पहला ही लफ्ज है वालमो, और इल्म हासिल करो। इल्म की शान यहाँ से पता चलेगी कि जब हम इल्म हासिल करते हैं तो हम अल्लाह की मर्जी को जानते हैं। फिर इस सूरत अनफाल का वो सिलसिला चल रहा है कि जहाँ पीछे से नबी सल्लम के हिजरत करने की बातें थी, यहाँ बताया जा रहा है कि जहनी हिजरत से जिस्मानी हिजरत तक। हिजरत दिल से शुरू होती है, फिर जिस्म पे जाके पूरी होती है। इस पूरे पारे में आपको तौबा का लफ्ज़ बहुत दिखेगा, और आगे सूरत तौबा भी आ रही है। फिर सियासी तकवा क्या होता है, इज्तमाई तकवा क्या होता है, आज के दौर में हम मुहाजिर बन के जिए या अंसार बने, ये सब कुछ हम इंशाल्लाह इसमें देखेंगे। फिर इसमें आपको फिरौन की तौबा का भी जिक्र मिलेगा। हम इसको उसी सोच के साथ पढ़ते जाते हैं क्योंकि गज़वे बदर ही का किस्सा कंटिन्यू हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और यहाँ सवाल को नोट कर लीजिए, सूरत के पहले सवाल को, यसअलूनक अनिल अनफाल। वो सवाल करते हैं कि माले गनीमत का क्या किया जाए। 40 आयात अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद उस सवाल का जवाब है कि वालमु अन्नमा गनिमतु मिन शयइन फअन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल। और तुम्हें मालूम हो कि जो माले गनीमत तुमने हासिल किया है, इसका पांचवा हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है। अगर तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर और उस चीज पर जो फैसले के रोज यानी दोनों फौजों के मिल जाने के दिन हमने अपने बंदे पर नाजिल की थी यानी बदर का दिन, तो ये हिस्सा बखुशी अदा करो, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि मुस्लिम स्टेट एक वेलफेयर स्टेट होती है। माल सिर्फ कमाने वाले का नहीं होता बल्कि दूसरे भी इसमें शरीक हैं। दुश्मन से जो माल गनीमत मिलता है उसकी बांट हमें बताती है कि मुसलमान उस माल को कितने खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और हर फील्ड में मनी लगेगी। आज हम जब वेस्टर्न कंट्रीज के सोशल सेटअप को देखते हैं और सोशल हेल्प मिलती है तो हम बहुत इंप्रेस होते हैं, लेकिन यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि इस्लाम ने इस चीज को शुरू में रखा था। इसके बाद गजवे बदर ही की तरफ मौजू चलता है। दुनिया वहुम बिलुद्वतिल कुस्वा। याद करो वक्त जबकि तुम वादी के उस जानिब थे और वो दूसरी जानिब पड़ाव डाले हुए थे, और काफिला तुमसे नीचे साहिल की तरफ था। अगर कहीं पहले से तुम्हारे और उनके दरमियान मुकाबले की करारदाद हो चुकी होती तो तुम जरूर इस मौके पर पहलू तही कर जाते, लेकिन जो कुछ पेश आया वो इसलिए था कि जिस बात का फैसला अल्लाह कर चुका इसे सहूर में ले आए, ताकि जिसे हलाक होना है दलील रोशन के साथ हलाक हो, और जिसे जिंदा रहना है वो दलील रोशन के साथ जिंदा रहे। यकीनन अल्लाह ताला खूब सुनने और जानने वाला है। गज़वे बदर कोई प्लान जंग नहीं थी, यह हमारे लिए एक लेसन है। प्लानिंग बहुत अच्छी बात है, लेकिन टू मच प्लानिंग कामों के रास्ते में रुकावट बनती है। बस दफा कई काम सिर्फ फाइलों की नजर हो जाता है, कई साल तक अभी उसकी अप्रूवल, अभी उसकी, अभी उस ऑफिस में जाएगी, अब उसको पकड़े, अब उधर पड़ो, और नतीजा होता है कि काम करने का वक्त गुजर जाता है। कभी कभी गो विद द फ्लो की तरह भी चलना पड़ता है। कुछ प्लानिंग करें और काम शुरू कर दें। जब हम बहुत ज्यादा सोचों में पड़ जाते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, हम किस तरह से चलेंगे, ये काम कैसे होगा, तो फिर बहुत दफा इंसान की हिम्मत टूट जाती है। बेखतर कूद पड़ना, अल्लाह के दीन के लिए नियत कीजिए, इरादे कीजिए, और उस काम को करने के लिए बस तैयार हो जाए। बाकी ना तो आप प्लानिंग करके जीतेंगे, ना बगैर प्लानिंग के जीतेंगे। जीत आपकी तब होगी जब वन तुम अलाउन इन कुन तुम मोमिनून। तो यहाँ यही सबक देकर गजवे बदर की कुछ हल्कियां बताएंगे। फिर इधर एक छोटा सा सवाल आता है कि गजवे बदर एक प्लान जंग नहीं थी, फिर जंग क्यों हुई और इस्लाम ने क्यों इस चैप्टर को क्लोज ही ना कर दिया? तो याद रखिए कि ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि जब तक दुनिया में जुल्म और बर्बरियत रहेगी जंगें होंगी। इस्लाम से पहले मार धाड़ लूट मार का इतना बुरा हाल था कि लोग साल के सिर्फ 4 महीने मेहनत करते थे, कमाते थे, और बाकी वो 4 महीने कौन से होते थे, जो हुरमत के, उसमें उनको यकीन होता था कि हमारा जान और माल बची हुई है, बाकी 8 महीने घरों में छुप के गुजारते थे। ऐसे दौर में इस्लाम ने इतने खूबसूरत तरीके से ये जंगों को प्लान करके चीजों को जनरलाइज किया कि आज आपको दिखता है कि दुनिया में जंग का उस तरह से नाम नहीं दिखता। तो इस्लाम ने सबसे पहले तबलीग की। आप लिख लीजिए आज के दौर में उम्मत मुस्लिमा की वॉर टैक्टिक्स क्या होनी चाहिए। नंबर एक, आप खुद इस्लाम सीखें, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जिस दर्जे पे सीखा हुआ है उसमें एक्सीलेंसी ले लीजिए, सब सीखा हुआ है तो माशाल्लाह। दूसरे दर्जे पे तस्किया। फर्स्ट क्या है, तालीम, फिर तज़किया, फिर उसके बाद होती है तरबिया, ट्रेनिंग लेना। काम करने से पहले ट्रेनिंग लेना, अपने आप को कामयाब करवाना है। और जो लोग थोड़ा सीखा और बाकी काम खुद करने बैठ जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते जो बहुत ट्रेनिंग और प्लानिंग के साथ होने लगती है। फिर उसके बाद तज़किया होता है, तज़किया भी हो गया, तबलीग हो गई, इसी के साथ इंसान में खूबियां पैदा होती हैं, तकवा पैदा होता है, अल्लाह की मार्फत मिलती है, फिर इंसान रुहबान बिल लैली व फरसान बिल नहार बनता है। और जब मक्का के 13 सालों में सहाबा कराम इस तरह से ट्रेंड हो चुके थे, तो उसके बाद जंग की इजाजत हुई। आप सवाल कीजिए कि मक्का में क्यों नहीं इजाजत मिली जंग की? सहाबा की ट्रेनिंग नहीं हुई थी, टीम तैयार कोई नहीं थी, तो बगैर तैयारी या अधूरी तैयारी से काम में कूद पड़ना खुद को तबाहो बर्बाद करना होता है। तो मक्का में इसलिए ना जंग हुई, क्या वर्द वहां भी हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने अभी तक वो नहीं किया था। आज जंग कौन करेगा? पहले नोट कीजिए, जो फजर के लिए उठ के नहीं जाता वो दुश्मन के आने पे कैसे करेगा? आज ये जो हमने एक उल्टी गंगा बहा दी ना, कि कुछ लोग सिर्फ तबलीग करेंगे, कुछ जंगे लड़ेंगे और कुछ लोग जो है वो सियासत लड़ेंगे, ये रॉन्ग है। एक ही गिरोह चलता है, पूरी उम्मत मुस्लिमा मुस्लिम आर्मी होती है। आज अगर इस्लाम आएगा तो मुस्लिम फौज के नाम पे फील्ड खत्म हो जाएगा। देर इज नो डिफरेंट थिंग फॉर आर्मी, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। वही लोग जो मस्जिदों मदरसों में कुरान पढ़ते हैं, वो ही वक्त पढ़ने पे स्टैंडिंग आर्मी के तौर पे खड़े होते हैं और वो फौजी बनते। क्यों? कुरान पढ़ा हुआ बंदा जिस तरह जाके जिहाद कर सकता है, वो दूसरा बंदा कैसे करेगा? कुरान पढ़े हुए जाके जिहाद में खड़े होते थे तो रातों को सूरह कहफ की तिलावत शुरू करते थे। आप सुन चुके हैं वाकया। आज का फौजी किसी भी मुल्क की ट्रेनिंग लेकर जाएगा, फौजी होगा, बहादुर होगा, ताकतवर होगा, सेल्फ कंट्रोल होगा, लेकिन ताल्लुक बिल्ला नहीं होगा। जब तक हम अपनी मुस्लिम आर्मी को रोहबान बिल लैल व फरसान बिन नहार नहीं बनाएंगे, उनको जंग की इजाजत नहीं होगी। वजह क्या कि मक्का में अगर ये ट्रेनिंग ना हुई होती और मदीना में आती बदर लड़नी पड़ती, वो तो पहले ही हल्ले में नाकाम हो जाते। फिर आप देखिए मक्का से मदीना में तो पहली 3-4 जंगें, बदर से लेके उहद और उसके बाद गजवे अहजाब तक, ये दिफाई जंगें थी, डिफेंसिव। हमने कुछ नहीं किया, मुसलमानों ने पहल नहीं की, जस्ट डिफेंड देमसेल्फ। तो ये फितरत है। क्या आपके घर दुश्मन आ जाए आपको मारने तो आप चुप करके बैठे रहेंगे? आपके घर चोर आ जाए तो आप बैठेंगे नहीं, आप पुलिस को बुलाएंगे, आप 911 को कॉल करेंगे। तो लिहाजा शुरू में यही हुआ, जब थोड़ा सा जोर बढ़ गया, जब लोगों को समझ आ गई कि इस्लाम एक ताकत है और वो उनके आगे आंखें दिखाने लगे, तो अल्लाह के नबी ने फिर ऑफेंसिव फायर भी की, क्योंकि उसमें किसी जगह जुल्म हो रहा था, किसी जगह कुछ था। तो तरबियत से बात शुरू होगी। आज क्या है, मुसलमान कुछ और है और इस्लाम कुछ और है। आज वो दौर आ गया है कि मुसलमान को 5 वक्त की नमाज नसीब नहीं, वो जिहाद कहाँ करेगा? जो फजर के नमाजी होते हैं ना, जो सुबह की सफे है नमाजों की, वक्त पड़ने पे ये जंग की सफों में बदलेंगी। जो माएं आज अपने बच्चों को 5 वक्त का नमाजी बना रही हैं, वो आने वाले किसी भी मुतवक्को खतरे के वक्त में मुसलमानों की फौजें तैयार कर रही हैं। ये कोई डिफरेंट फील्ड नहीं है कि तलवारें उठाएं। माएं कलम पकड़ाती थी और वैन पे जाके तलवार में ढलता था। इमाम बुखारी की जिंदगी पढ़ लें आप, जितने हमारे आइम्मा कराम है, दोनों चीजें साथ साथ चलती थी। बेहतरीन फौजी कुरान पढ़ा हुआ शख्स होगा। और अगर नमाज में लिल्लाहियत नहीं है तो जंग में लिल्लाहियत कहाँ आएगी? वहां तो ये आपस में लड़ खड़ के आ जाएंगे, ये तो अपने अपने एक दूसरे की गर्दनें काटेंगे। आप देखिए इतने ज्याले किस्म के लोग थे मुस्लिम फौज में, कि आप देखिए कि हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत उमर और हजरत अली, अगर इनका तरबिया ना हुआ था, एक इशारे पे ये रुक जाते थे, स्टॉप, खामोश, कोई नहीं लड़ा। अगर इनकी तरबियत ना हुई होती, ये गर्दनें पकड़ के एक दूसरे की काटते। हुदैबिया के मौके पे अल्लाह के नबी ने कहा रोक जो आगे नहीं जाना, स्टॉप स्टॉप हो गए। तो ये ग्रोह तैयार करना इस वक्त का, जो मुझे लगता है ये पूरी सदी, ये अभी जो एक चल रही है, इससे अगली एक आधी सदी का जिहाद क्या है? हम अपनी नस्लों के दिल में इस्लाम की मोहब्बत डालें, नबी की मोहब्बत डालें, और उनके दिलों में वो जज्बे डालें कि वक्त पड़ने पे वो फिर खुद ब खुद काम करेंगे। दुनिया से थोड़ा थोड़ा काटते जाए, दीन से जोड़े, आखरत, मौत, ये तैयारियां होती हैं जंगों की। इसीलिए तो आप देखिए कि चंद लोग पूरी जंगों में मारे गए, सहाबा कराम। एक सहाबी आगे, आप पीछे पढ़ चुके हैं सूरत निसा में वाकया, कि एक शख्स ने उनके सामने कलमा भी पढ़ दिया, उन्होंने फिर भी मार दिया। चले जवान थे, हजरत उसामा बिन ज़ैद, जवानी कह लीजिए या गलती हो गई कि इसने जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा, तो उस पर अल्लाह के नबी ने कितना सख्त एक्शन लिया कि कल क्या होगा अगर ये कलमा میں تمہارے سامنے قیامت کے دن پیش کر دیا گیا اور تم نے مار دیا. آج نہ جانے, یقین کیجئے, جنگوں میں کوئی پتہ نہیں کتنے مسلمان مارے جا رہے ہیں کفر کے نام پہ. ایک بھگدڑ مچی ہوئی اس وقت دنیا میں. جنگ کے لیے جانے والوں میں للہیت نہیں ہے, ان کے چہروں پہ سنت نہیں ہے, ان کے دلوں میں ایمان اور تقویٰ نہیں ہے. مدد کیوں ہے؟ 60-70 سال سے آپ ایک زمین کے ٹکڑے پہ لڑ رہے ہیں, ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں آپ کر سکے. اللہ کے نبی کے دور کی جنگیں سب سے طویل جنگ 1 مہینہ رہی تھی. دیٹس اٹ, ختم, یا ادھر یا ادھر. تو یہ ساری پریپریشن کر لیجئے, پھر آپ دیکھیے گا کتنا فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو دلیل کی بات کی ہے, اب اس کے اگلی آیتوں میں تعداد کی بات ہو رہی ہے. کہ بعض لوگ تعداد کی بات کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو بدر کی فتح تعداد سے نہیں ہوئی تھی, اخلاقی وجہ سے تھی. وعلمو, علم حاصل کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کو بتا دیا کہ دیکھو فتح سے کہیں نہ اخلاقی طور پہ پیچھے نہ چلے جانا, اسی لیے یہاں ہدایات ہے. آپ نے پیچھے سورت آل عمران میں غزوہ احد کی شکست کے بعد اسی طرح کا تربیتی نوٹ پڑا تھا جو یہاں بھی آ رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ کو کس طرح سے جینا ہے. غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ اس جری کا ہم اللہ فی منامی کا قلیلا, اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اللہ تعالیٰ خود تم کو, خود ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا, اور اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ کر کے دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے مقابلے میں جھگڑا شروع کر دیتے, لیکن اللہ نے ہی تم کو ان سے بچایا, یقیناً وہ سینوں کا حال جانتا ہے. اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا کر کے دکھایا اور ان کی تعداد میں تمہیں کم کر کے دکھایا, تاکہ جو بات ہونی تھی اللہ اسے ظہور میں لے آئے. آخر کار سارے معاملے اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. یہاں بھی سمجھ لیجئے کہ اسلام تعداد پہ اعتبار نہیں کرتا. تعداد پہ اعتبار کرنا انسان کو غلط فہمی میں ڈال دیتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ ہیڈ کاؤنٹ ہو گئی. مسجدوں کی تو بات چھوڑے, آپ قرآن پڑھنے آتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کتنے لوگ آ رہے ہیں, کتنے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے. یعنی ہم ہیڈ کاؤنٹ پہ اتنا اعتبار کرتے ہیں کہ زیادہ لوگ ہیں تو ہم کہتے ہیں بہت اچھا کام ہو رہا ہے, اور ذرا تھوڑے لوگ آئیں زیادہ لوگ کام نہ کریں کہتے ہیں نہیں کوئی خرابی ہوگی تبھی تو ایسا ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ دیکھو وہاں تھوڑے تھے یا زیادہ تھے, آپ یہ پورا ایک منظر چلا تھا, کبھی وہ کافروں کو زیادہ دکھ رہے ہیں کبھی کم دکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دل بندھا رہا تھا. میرا اور آپ کا اس میں کام کیا ہے؟ ہیڈ کاؤنٹ میں مت پڑے, تعداد کو نہ گنیں, کام کر کے دکھائیں. آپ اکیلی ہیں کام شروع کر دیں, 5 لوگ ہیں کام شروع کر دیں, اپنا حصہ ڈال دیں اور اللہ کو یہ دکھا دیں کہ میں دلیل کے ساتھ جی رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں یہ سارا کچھ کیوں بتا دیا؟ تاکہ جب تم اللہ کے راستوں میں نکلو تو تم یہ تسلی کر لو کہ تم ٹھیک راستے پہ ہو. اس کے بعد فتح ہے یا شکست ہے تمہیں اس کی فکر نہیں ہے. مومن فتح کے لیے تو لڑتا بھی نہیں ہے, اس کا لڑنا تو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والا ہوتا ہے. آپ اس رکوع کو ہائی لائٹ کر لیں جو آپ پڑھنے لگے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کی مدد آتی ہے. فرمایا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو. پہلی چیز, امت مسلمہ ثابت قدم رہے. اس کو اکٹھا کر کے پھر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. دوسری بات, ذکر اللہ, توقع ہے کہ تمہیں کامیابی ہوگی. پھر تیسری چیز, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. پھر آپس میں جھگڑو نہیں, ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لو, یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اگلا حکم, اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے, اور جن کی روش ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں. یعنی شو آف نہ کرو, دکھاوا نہ کرو, شادیوں میں, منگنیوں میں اس طرح سے اپنے جہیز اور ان چیزوں کا ڈسپلے نہ دو کہ جس کے اندر آپ کو کیا محسوس ہو. کہ اس طرح کا ڈسپلے جب آپ دیں گے کہ جس میں لوگوں کو یہ لگے کہ مسلمان اتنے شو پرست ہو گئے کہ ایک ایک شادی کو دوسروں کے لیے وجل بنا دیں گے, تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد کیسے کرے گا؟ اب اگر آپ دیکھیے کہ ان ساری آیتوں میں جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں, اگر ہم ان سب کو اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں تو ہر قسم کے جہاد میں کامیابی کا یہ راز ہے, چاہے وہ علمی جہاد ہے, عملی جہاد ہے, یا جنگوں کا جہاد ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں دوبارہ آپس کے اختلافات کی بات آ رہی ہے. صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جمع ہوتے تھے اور اسی میں الگ ہوتے تھے, اسی لیے وہ ایک تھے. بعد میں ادوار میں حب جاہ اور حب مال آ گئی, امت مسلمہ بٹ گئی. جب مسلمانوں میں عہدوں کی جنگ لگ جائے, مال میں کون, مجھے کیا بنا دیا, میرا نام کدھر رکھ دیا, مجھے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر کر دیا, تو وہاں مسلمان نقصان پاتے ہیں. امت مسلمہ عام امت نہیں ہے, वो मौलाना हाली के शायद अशार है ना, तो क्या सकवा में मगरिब पर न कर, खास है तरकीब में कौम हाशमी। ये हम बहुत खास है, हमारा खमीर कुछ और है, अल्लाह ने हमें खास मिट्टी से गूंदा है। हम कभी रंग नस्ल पर मुत्तहिद नहीं हो सकते, हम अरबी और अजमी पे मुत्तहिद नहीं हो सकते। उम्मत बनाने वाली चीज अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, इसलिए जब आपस में एक रहेंगे, सब्र करेंगे, इरादे करेंगे, अल्लाह की मदद होगी। और जब उम्मत मुस्लिम इन सब चीजों को छोड़ती है तो नुकसान वही होगा जो आज हो रहा है। आज हम अपनी एक एक शादी को अपने लिए जिहाद बना लेते हैं। ये जो मंजर आपने पढ़ा, ये ऐसे नहीं लगता किसी जंग का मंजर नहीं है, बल्कि ये किसी बारात का मंजर है। जब सज ढक के घर से निकलते हैं, उस वक्त हमें क्या लग रहा होता है, कोई आज हमसा हो तो आए। किसके पास इतना वक्त है कि वो अपने आप को इतना डिस्प्ले करे और अल्लाह का दीन इस तरह से पढ़ा हो। अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमारी मदद कर दे। देखिए, अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे ना तो साबित कदमी, और साबित कदमी आती तब है जब आपको अपने मकसद का यकीन होता है। अल्लाह को आपसे चाहिए। आप एक टेबल खरीदते हैं तो आप कौन सा खरीदते हैं जो स्टडी हो, स्ट्रांग हो, क्योंकि आपने उस पर कंप्यूटर रखना है। कच्चे टेबल पे मैं अपना कंप्यूटर तो कभी ना रखती, हर वक्त धड़का लगा रहता कि ये गिर ना जाए, ये टूट ना जाए। तो क्या अल्लाह कच्चे मुसलमानों पे अपना काम डालेगा? कच्चे मुसलमानों को अपना दीन देगा तो स्ट्रांग बनना है, और फर्म होंगे तब जब फिर दूसरों को भी मदद मिलेगी। दुनिया में इंसान की काबिलियत की बुनियाद पे उसको सिलेक्ट किया जाता है। अल्लाह सुबहान तआला बंदे को उसके जज्बों और उसकी तड़प की बुनियाद पे देखता है, इसलिए फरमाया कि फसबतू, जम जाओ, वापिस लौटने का तो सोचो ना। जुबाने जिक्रुल्लाह से तर हो, हाथ काम करें, दिमाग में मकसद वाजे हो, ऐसी कौम को फिर कोई हरा नहीं सकता कि शैतान तक मायूस होता है। अगली आयतों में एक वाक्य की तरफ इशारा है।